का था, रूह वही, रूप नया।
दिलेर मुजरिम के भाग 5 में आपने सुना कि किस तरह बचते बचाते डॉक्टर शौकत नवाब वजाहत अली की कोठी उनका ऑपरेशन करने पहुंच ही गया। इधर सलीम को प्रोफेसर ने बंदी बना लिया और सलीम से उसके किए गए जुर्मों के सारे राज उगलवा लिए। प्रोफेसर के भेस में फरीदी आखिरकार सामने आ गया, क्योंकि फरीदी मरा नहीं था। क्या ये सारे के सारे राज फरीदी सबूत के साथ पुलिस के सामने पेश कर पाया? क्या सलीम को सजा हुई? जानने के लिए सुनिए आगे का भाग। तो तुम मुझे नहीं खोलोगे? देखो मैं कह देता हूं। बस बस बस, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर शौकत का कारनामा देखने दो। देखो मिस्टर, पहले तो मुझे यकीन नहीं है कि तुम सरकारी जासूस हो, और अगर हो भी तो मुझे इसे क्या करना? आखिर तुमने मुझे किस कानून के तहत यहां बांध रखा है? सलीम तेजी से बोला, इसलिए कि तुमने अपना जुर्म अभी अभी कबूल किया है। क्या ये तुम्हें बांध के रखने के लिए काफी नहीं है? क्या बेवकूफों की सी बातें करते हो, सलीम ने कहा लगाया। तुम इसे सच समझ बैठे हो? झूठ समझने की कोई वजह भी तो नहीं, फरीदी ने दूरबीन पर झुकते हुए कहा। अरे होश की दवा लो मिस्टर, सलीम बोला। कुछ देर पहले मैं एक पागल आदमी से बातें कर रहा था, अगर मैं उसकी हाँ में हाँ ना मिलाता तो वो मेरे साथ जाने क्या बर्ताव करता? मैं उसके जुल्म अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए जान बचाने के लिए और कोई चारा नहीं था। वाह मेरे भोले जासूस वाह। खैर जो हुआ सो हुआ, मुझे फौरन खोल दो। इंसान ही से गलती होती है, मैं वादा करता हूँ कि अफसरों से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। फरीदी उसे बेबसी से देख रहा था और सलीम के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट खेल रही थी। खैर खैर कोई बात नहीं, फरीदी ने संभल कर कहा, लेकिन आज तुमने डॉक्टर शौकत को कत्ल करने की जो कोशिशें की हैं वो मैंने खुद देखी हैं। डॉक्टर शौकत की कार मैंने बिगाड़ी थी, मैं ये पहले से जानता था कि इस वक्त कोठी में कोई कार मौजूद नहीं थी। मैं दरअसल चाहता था कि वो पैदल आए, सिर्फ ये देखने के लिए कि असली साजिश रचने वाला कौन है। क्या तुम कार का बहाना करके वहां से नहीं टल गए थे? क्या तुमने प्रोफेसर को जहरीली सुई देकर उसे शौकत से हाथ मिलाने के बहाने चुप होने को नहीं कहा था? जब तुमने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला तब भी मैं तुमसे थोड़ी ही दूर के फासले पर मौजूद था, और मैंने ही शौकत की जान बचाई थी। न जाने तुम कौन कौन सी अली बाबा 40 चोरों जैसी कहानी सुना रहे हो। अरे अक्लमंद आदमी जरा सोचो तो, आखिर मैं डॉक्टर शौकत की जान क्यों लेना चाहूंगा जबकि वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हैं। अब तुम कहोगे कि मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि चचा जान बच ना सकें, लेकिन ऐसा सोचना बेवकूफी होगी। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही उन्हें खत्म कर चुका होता और किसी को कानो कान खबर तक ना होती, सलीम ने उकता कर कहा। क्या कहा? शौकत तुम्हारे लिए अजनबी है? तुम उसके लिए अजनबी हो सकते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है। क्या मैं बताऊं कि तुम उसकी जान क्यों लेना चाहते हो? फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। फरीदी के शब्दों में असर जबरदस्त था। सलीम फिर सुस्त पड़ गया, उसकी आंखों से खौफ छलकने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खौफ पर काबू पा लिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? उसने फरीदी से कहा। तुमको कानून के हवाले करना, लेकिन किस जुर्म में? तुमने अभी अभी जो अपने जुर्म कबूल किए हैं। अच्छा चलो यही सही, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने इकबाले जुर्म किया है? अदालत में तुम किसे गवाह की हैसियत से पेश करोगे जबकि यहां मेरे और तुम्हारे सिवा कोई तीसरा है ही नहीं? देखो मिस्टर फरीदी, मुझे झांसा देना आसान काम नहीं है, तुम इस तरह अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा चलाकर कामयाब नहीं हो सकते, सलीम बोला। तब तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, काश मैं सार्जेंट हमीद को भी यहां लाता, फरीदी ने हाथ मलते हुए बेबसी से कहा। एक अच्छे हो मिस्टर जासूस, सलीम ने जोरदार कहकहा लगाया और बोला, उफ मेरे खुदा, उफ मेरे खुदा, लेकिन तुमने अभी अभी मेरे सामने इकबाले जुर्म किया था कि तुम कातिल हो, फरीदी ने बौखला कर कहना शुरू किया। हकलाओ नहीं प्यारे, लो मैं एक बार फिर इकबाले जुर्म करता हूँ कि मैंने ही शौकत को कत्ल करने या कराने की कोशिश की थी, मैंने ही नेपाली को भी कत्ल किया था, मैंने तुम पर भी गोलियां चलाई थी, लेकिन फिर क्या, तुम मेरा क्या कर सकते हो? मैं एक ऊंचे खानदान का आदमी हूं, राज रूप नगर का होने वाला नवाब, तुम्हारी बकवास पर किसे यकीन आएगा? बहुत अच्छे बरखुरदार, बहुत अच्छे, तुम अक्लमंद हो, लेकिन साफ है कि अब तुमने जो इकबाले जुर्म किया है वो पागल प्रोफेसर के सामने नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर फरीदी के सामने किया है, फरीदी ने हंसते हुए कहा। हाँ तो फिर उससे क्या, मैं हजार बार इकबाले जुर्म कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ हम दोनों के सिवा और कोई है ही नहीं। कहो तो एक बार फिर दोहरा दूं, सलीम ने हंसते हुए कहा। बस 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 काफी है, फरीदी ने जले हुए सिगरेट का टुकड़ा फेंकते हुए कहा। तुम फरीदी को नहीं जानते, इधर देखो इस अलमारी में, लेकिन नहीं तुम्हें नहीं दिखाई देगा, रो मैं मोमबत्ती उठाकर लाता हूं। देखो बेटा सलीम, ये एक बेहद ताकतवर ट्रांसमीटर है और अभी हाल ही की इजाद है, एक छोटी सी बैटरी इसे चलाने के लिए काफी होती है, क्या समझे? इसके जरिए मेरी और तुम्हारी आवाजें धीरे धीरे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर तक पहुंच रही होंगी और इनको रिकॉर्ड कर लिया गया है। मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम एक मामूली मुजरिम तो नहीं हो, इसीलिए मैंने पहले ही सारे इंतजाम कर लिए थे। अब कहो कौन जीता, फरीदी ने कहकहा लगाया और सलीम निढाल होकर रह गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदे थी, उसने अपना दिल सिर के उस हिस्से में धड़कता महसूस किया जहां चोट लगी थी, लेकिन उसके जहन ने अभी तक हार कबूल न की थी। सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा उसके करीब ही पड़ा था, उसने फरीदी की नजर बचाकर उसे पैर से धीरे धीरे अपनी तरफ खिसकाना शुरू किया। अब सिगरेट का जलता हुआ हिस्सा रस्सी के एक बल से लगा हुआ उसे धीरे धीरे जला रहा था। सलीम ने अपने दोनों पैर समेट कर रस्सी के सामने कर लिए, रस्सी सूखी थी और आग ने अपना काम शुरू कर दिया था। फरीदी इस बात से बेखबर दूरबीन पर झुका हुआ था। अचानक सलीम सोफे समेत उसकी तरफ पलट गया, फरीदी चौंक कर उसकी तरफ झपटा, लेकिन इससे पहले कि फरीदी कुछ कर सके सलीम रस्सी की गिरफ्त से आजाद हो गया था। फरीदी उस पर टूट पड़ा, लेकिन सलीम को हराना आसान काम न था। थोड़ी देर बाद दोनों गुथे हुए हांफ रहे थे। सलीम को सुस्त पाकर फरीदी को जेब से पिस्तौल निकालने का मौका मिल गया, लेकिन सलीम ने इस फुर्ती के साथ उससे पिस्तौल छीन लिया जैसे वो उसका इंतजार ही कर रहा था। इसी कश्मकश में पिस्तौल चल गया, फरीदी ने चीख मारी और गिरते गिरते उसका सिर दूरबीन से टकरा गया। वो लगभग बेहोश होकर जमीन पर औंधा पड़ा था। सलीम खड़ा हांफ रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अचानक वो ट्रांसमीटर के सामने खड़ा होकर बुरी तरह खांसने लगा, ऐसा मालूम होता था जैसे उस पर खांसी का दौरा पड़ गया हो। फिर भर्राई हुई आवाज में बोलने लगा, मैं इंस्पेक्टर फरीदी बोल रहा हूँ, अभी सलीम मेरी गिरफ्त से निकल गया है, काफी जद्दोजहद के बाद मैंने उसके पैर में गोली मार दी है, अब वो फिर मेरी कैद में है, मैं उसे पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ, बाकी रिपोर्ट कल सुबह 8 बजे। अब सलीम ने ट्रांसमीटर का तार बैटरी से अलग कर दिया, उसके पुर्जे पुर्जे इधर उधर बिखर गए, वो तेजी से सीढ़ियां तय करता हुआ नीचे उतर रहा था। इंस्पेक्टर फरीदी ने अपनी मौत की खबर छपवाने में बड़ी ही एहतियात से काम लिया था। राजरूप नगर के जंगलों में दुश्मन से मुकाबला करते वक्त अचानक उसके जहन में ये ख्याल आया था, वो इस तरह चीख कर भागा था जैसे वो जख्मी हो गया हो। वो अस्पताल गया और वहां उसने चीफ इंस्पेक्टर को बुलवा कर उसे सारा हाल बताया और उससे माफी मांगी। ये चीज मुश्किल न थी, चीफ इंस्पेक्टर ने पुलिस कमिश्नर से राय करके पुलिस अस्पताल के इंचार्ज कर्नल तिवारी से सब मामले तय कर लिए थे, लेकिन उसे ये ना बताया गया कि ड्रामा खेलने का असली मकसद क्या है। सिविल अस्पताल से खुफिया तरीके से एक लाश हासिल की गई, फिर उस पर इंस्पेक्टर फरीदी का मेकअप किया गया। यही वजह थी कि सलीम आसानी से धोखा खा गया। इन सब बातों से फुर्सत पाने के बाद इंस्पेक्टर फरीदी ने भेस बदलकर अपना काम करना शुरू कर दिया। तीसरे दिन अचानक कर्नल तिवारी का ट्रांसफर हुक्म आ गया और उसे इतना ही टाइम मिल सका कि उसने डॉक्टर तौसीफ को एक खत लिख दिया। इंस्पेक्टर फरीदी को अब तक सलीम पर महज शक था। उसकी तहकीकात का रुख ज्यादातर प्रोफेसर ही की तरफ रहा। इस सिलसिले में उसे इस बात का पता चला कि सलीम प्रोफेसर को धोखे में रखकर अपना हथियार बनाए हुए है। प्रोफेसर के सिलसिले में उसने एक बिल्कुल ही नई बात मालूम की जिसका पता सलीम को भी नहीं था। वो ये कि प्रोफेसर नाजायज तौर पर कोकीन हासिल किया करता था। जिसके तरीके से कोकीन उस तक पहुंचती थी वो बहुत दिलचस्प था। उसे एक हफ्ते में एक पैकेट कोकीन मिला करती थी। कोकीन बेचने वालों के गिरोह का एक आदमी हर हफ्ते एक पैकेट कोकीन उसके लिए लाकर पुरानी कोठी के बागीचे में छुपा दिया करता था। वहीं उसके दाम भी रखे हुए मिल जाते थे। एक दो बार उसे मालियों ने टोका भी, लेकिन उसने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि वो दवा के लिए बीर बहुटी तलाश कर रहा है। फरीदी ने फिलहाल इस गिरोह को पकड़वाने की कोशिश ना की, क्योंकि उसके सामने इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मामला था। डॉक्टर शौकत के राजरूप नगर जाने से एक दिन पहले ही उसने कोठी के एक माली को भारी भरकम रकम देकर मिला लिया था। इसीलिए कोठी के लोगों के बारे में सब कुछ जान लेने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। ऑपरेशन वाली रात को सार्जेंट हमीद भी वहां आ गया। फरीदी ने उसे प्रोफेसर को बहला फुसला कर माली के झोपड़े तक लाने के लिए तैनात कर दिया था। इसके लिए पूरी स्कीम पहले ही बन चुकी थी। हमीद प्रोफेसर को कोकीन देने का लालच दिलाकर माली के झोपड़े तक लाया। यहां उसे कोकीन में कोई तेज किस्म की नशीली चीज दी गई, जिसके असर से प्रोफेसर बहुत जल्द बेहोश हो गया। उसके बाद इंस्पेक्टर फरीदी ने उसके कपड़े खुद पहन लिए और ट्रांसमीटर को गठरी में बांधकर झोपड़े से निकल गया। झोपड़े से बाहर जिसने उछल कूद मचाई थी वो इंस्पेक्टर फरीदी ही था। जब फरीदी को गए काफी समय बीत गया तो हमीद का दिल घबराने लगा। उसने सोचा कि कहीं कोई हादसा ना पेश आ गया हो। फरीदी ने उसे बेहोश प्रोफेसर को सोता छोड़कर कहीं जाने की इजाजत न दी थी, लेकिन उसका दिल न माना। वो प्रोफेसर को सोता छोड़कर पुरानी कोठी की तरफ रवाना हो गया। मीनार में वो उस वक्त दाखिल हुआ जब सलीम आ चुका था। ट्रांसमीटर चूर चूर होकर फर्श पर बिखरा पड़ा था और फरीदी अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ था। हमीद वहां का नजारा देखकर लगभग चीखते चीखते रुक सा गया। उसने दौड़कर फरीदी को उठाने की कोशिश की। वो बेहोश था। बाहर से कहीं कोई चोट मालूम ना होती थी। थोड़ी देर बाद कराह कर उसने करवट बदली। हमीद उसे हिलाने लगा। वो चौंक कर उठ बैठा। तुम वो मर्दूत कहां है? उसने आंखें मलते हुए कहा। कौन? अरे वही सलीम। अफसोस, हाथ में आकर भी निकल गया। फिर उसने जल्दी जल्दी सारी बातें हमीद को बतानी शुरू की। उसने तो अपने हिसाब से मुझे मार ही डाला था, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई मैंने एक बार फिर उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बुरा हो इस दूरबीन का, इसकी वजह से सब धरा का धरा रह गया। अगर मेरा सिर इससे न टकराता तो मैंने पाला मार लिया था। अरे उस ट्रांसमीटर का क्या हुआ? तोड़ दिया कमबख्त ने। ऐसा बहादुर अपराधी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। आइए चलते हैं, उसे चलकर तलाश करते हैं, हमीद ने कहा। पागल हो गए हो? अब तो तुम उसकी परछाई को भी नहीं पा सकते। वो मामूली दिमाग का आदमी नहीं है। देखूं तो ऑपरेशन कैसा रहा? उसने दूरबीन के शीशे से आंख लगा दी। थोड़ी देर तक खामोश रहा। अरे, वो चौंक कर बोला, ये पाइप के सहारे दीवार पर कौन चढ़ रहा है? सलीम, इसका क्या मतलब? वो तो खिड़की के करीब पहुंच गया है। ये उसने जेब से क्या निकाला है? ये नलकी जैसी? ओ माय गॉड, ये नलकी वो होठों में दबा रहा है। कत्ल, कत्ल! हमीद, अब डॉक्टर शौकत इतनी खामोशी से कत्ल हो जाएगा कि उसके करीब खड़ी नर्स को पता तक ना चलेगा। उफ, ये क्या किया मैंने! जितनी देर में हम वहां पहुंचेंगे सब काम तमाम हो जाएगा। हम बहुत पिस्तौल भी अपने साथ लेता गया। पिस्तौल है मेरे पास, हमीद ने कहा, लेकिन बेकार, इतनी दूर से पिस्तौल किस काम का? उफो, अब क्या किया जाए? उसकी नलकी में वो जहरीली सुई है। अभी वो एक फूंक मारेगा और सुई निकलकर डॉक्टर शौकत को जा लगेगी। उफ मेरे खुदा, अब क्या होगा? वो शायद निशाना लगा रहा है। हाँ, याद आया, मैंने वो राइफल नीचे देखी है। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। फरीदी ये कहकर दौड़ता हुआ नीचे चला गया। वापसी पर उसके हाथ में एक छोटी सी हवाई राइफल थी जो उसने प्रोफेसर के हाथ में देखी थी। उसने उसे खोल कर देखा। उसकी मैगजीन में कई कारतूस बाकी थे। हटो हटो, जल्दी हटो, खिड़की से हटो। उसने खिड़की से निशाना लिया। बीमार के कमरे से आती हुई रोशनी में सलीम का निशाना साफ नजर आ रहा था। फरीदी ने राइफल चला दी। सलीम उछल कर एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। वो मारा, उसने राइफल फेंक कर जीने की तरफ दौड़ते हुए कहा। हमीद भी उसके पीछे था। ये लोग उस वक्त पहुंचे जब बेगम साहिबा, नजमा, डॉक्टर तौसीफ और कई कर्मचारी वहां इकट्ठे हो गए थे। औरतों की चीख पुकार सुनकर डॉक्टर शौकत भी नीचे आ गया था। फरीदे ने उसके कंधे पर हाथ रख कर पूछा, कहो डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा रहा? शौकत चौंक कर दो कदम पीछे हट गया। तुम? वो मुंह फाड़े हैरत से बोल रहा था। हाँ हाँ, मैं हूं, भूत नहीं हूं। बताओ ऑपरेशन कैसा रहा? कामयाब रहा, लेकिन तुम? शौकत ने बौखला कर कहा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मरा था मेरे दोस्त। और ये देखो, आज जिसने तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाला था वो तुम्हारे सामने मुर्दा पड़ा है। अब सारे लोग फरीदी की तरफ देख रहे थे। आप लोग मेहरबानी करके लाश के पास से हट जाइए, फरीदी ने कहा। मीत, तुम डॉक्टर शौकत की कार पर थाने चले जाओ। तुम कौन हो? बेगम साहिबा गरज कर बोली। मोहतरमा सलाम, मैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन या यूं समझ लीजिए जासूसी विभाग का इंस्पेक्टर हूं। और मैं सर्कस वाले नेपाली के कातिल और डॉक्टर शौकत की जान लेने की कोशिश करने वाले की लाश थाने ले जाना चाहता हूं। क्या क्या बक रहे हो तुम? नजमा ने आंसू पोंछते हुए पूछा। मैं जो कुछ भी बक रहा हूं उसका खुलासा कानून करेगा। एक हफ्ते बाद नजमा और डॉक्टर शौकत कोठी के पास बाग में चहलकदमी कर रहे थे। ओह, तुम बहुत शरारती हो नजमा, आखिर बेचारे मालियों को तंग करने का क्या फायदा? ये क्यारियां जो तुमने बिगाड़ दी, माली इसका गुस्सा किसी और पर उतारेगा, शौकत ने कहा। मैंने इसलिए बिगाड़ी हैं ये क्यारियां क्योंकि मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हूँ। क्या मतलब? डॉक्टर शौकत ने कहा। यही कि तुम उनका ऑपरेशन करके उन्हें फिर ठीक कर दो, नजमा ने शोखी से कहा। उन्हें तो नहीं, लेकिन शादी हो जाने के बाद तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हें बंदरिया जरूर बना दूंगा। शादी? बहुत खूब, शादी? तो तुम ये समझते हो कि मैं सचमुच तुमसे शादी कर लूंगी? तुम करो या ना करो, लेकिन मैं तो कर ही लूंगा। तो मुझे बंदरिया बनाने से क्या फायदा? क्यों ना तुम्हारे लिए एक बंदरिया पकड़वा ली जाए, ऑपरेशन की जहमत से बच जाओगे। अच्छा, ठहरो, अभी बताता हूँ। हेलो फरीदी, आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। फरीदी और हमीद कार से उतर रहे थे। नवाब साहब का क्या हाल है? फरीदी ने शौकत से हाथ मिलाते हुए पूछा। अच्छे हैं, तुम्हें याद कर रहे थे। आओ चलो अंदर चले। नवाब साहब गांव तकिया में टेक लगाए अंगूर खा रहे थे। फरीदी को देखकर बोले,
अरे आओ फरीदी मियां, आओ, मैं आज तुम्हें ही याद कर रहा था। मैंने तुम्हें उस वक्त देखा था जब मुझे बोलने की इजाजत तक ना थी। आजकल तो मेरे बेटे का हुक्म ही मुझ पर चल रहा है।
नवाब साहब ने शौकत की तरफ प्यार से देखा। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, फरीदी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद नवाब साहब ने कहा,
फरीदी मियां, तुम्हें इस बात का पता कैसे चला कि शौकत मेरा बेटा है?
मैं कहानी का बाकी हिस्सा आपकी जबानी सुनना चाहता हूँ, फरीदी ने कहा।
अरे नहीं भाई, पहले तुम बताओ,
नवाब साहब बोले। मेरी कहानी ज्यादा लंबी नहीं, सिर्फ दो लफ्जों में खत्म हो जाएगी। जब मैं पहली बार सलीम से रिपोर्टर के भेस में मिला था, उस वक्त मैंने आपके वालिद साहब की तस्वीर देखकर अंदाजा लगा लिया था कि इस कोठी का कोई मेंबर डॉक्टर शौकत को क्यों कत्ल करना चाहता है। शौकत की शक्ल हूबहू नवाब साहब मरहूम से मिलती है, लेकिन मुझे हैरत है कि जिस बात का पता डॉक्टर शौकत को नहीं था, उसका पता सलीम को कैसे हुआ?
शायद मैं बेहोशी के दौरान कुछ पक गया होऊंगा। मुझे मालूम है कि सलीम ज्यादातर मेरे करीब ही रहता है। फरीदी मियां, ये एक बहुत दर्द भरी दास्तान है, मैं तुम्हें शुरू से सुनाता हूँ। शौकत की माँ हमारे खानदान की नहीं थी, लेकिन वो किसी पिछड़ी जाति से भी ताल्लुक नहीं रखती थी। उनमें सिर्फ इतनी ही खराबी थी कि उनके माता पिता हमारी तरह दौलतमंद न थे। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे, लेकिन वालिद साहब मरहूम के डर से खुल्लम खुल्ला शादी न कर सके, इसलिए हमने छिप कर शादी कर ली। एक साल के बाद शौकत पैदा हुआ, लेकिन उसकी पैदाइश के 6 महीने बाद शौकत की माँ को एक खतरनाक बीमारी हो गई। उसी हालत में वो 2 साल तक जिंदा रही। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को जागीरदारान माहौल से अलग रखकर ऊंची तालीम दिलाएं। बड़ी ही रहम दिल औरत थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा डॉक्टरी की तालीम हासिल करके गरीबों की मदद करे। ये उसका ख्याल था और बिल्कुल ठीक था कि जागीरदारी माहौल में पले हुए बच्चे गरीबों के दिल का दर्द नहीं समझते। जब वो दम तोड़ रही थीं तो उसने मुझसे वादा लिया था कि उस वक्त तक मैं शौकत पर यह बात जाहिर ना होने दूँ जब तक वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक अच्छे किरदार का मालिक ना हो जाए। फिर उन्होंने शौकत को सविता देवी के सुपुर्द कर दिया। मैं खुफिया तौर पर सविता देवी की मदद किया करता था। खुदा जन्नत नसीब करे उसे, बड़ी खूबियों की मालिक थी। आखिरकार उसने शौकत के लिए जान दे दी। शौकत की माँ के इंतकाल के बाद मेरा दिल टूट गया। मैंने फिर कभी दूसरी शादी नहीं की। दुनिया यही समझती रही कि मैं ताजिंदगी कुंवारा ही रहा।
नवाब साहब ने फिर शौकत और नजमा की तरफ प्यार भरी नजरों से देखकर कहा,
अब मेरी जिंदगी में फिर से बहार आ गई है। ए खुदा।
उनकी आवाज रुंध गई और आंखों में आंसू छलक पड़े।
फरीदी मियां, इस सिलसिले में तुम्हें जो परेशानियां उठानी पड़ी उनका हाल मुझे मालूम है। बा खुदा, मैं तुम्हें शौकत से कम नहीं समझता। तुम भी मुझे उतने ही अजीज हो जितने की शौकत और नजमा।
अरे ये तो आपकी मोहब्बत है जनाब, फरीदी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा।
हाँ भाई, वो बेचारे प्रोफेसर का क्या हुआ?
वो किसी तरह रिहा नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसे बचाने की भरपूर कोशिश करूंगा।
अच्छा भाई अच्छा, तुम लोग जाकर चाय पियो। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, अगले महीने शौकत और नजमा की शादी है।
नवाब साहब ने नजमा और शौकत की ओर देखते हुए कहा।
अभी से कह देता हूँ फरीदी मियाँ कि तुम्हें और हमीन साहब को शादी से 1 हफ्ता पहले की छुट्टी लेकर आना होगा।
जरूर जरूर, मुबारक हो, फरीदी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। नजमा और शौकत ने शर्मा कर सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद चारों ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। भाई फरीदी, तुम कब शादी कर रहे हो? डॉक्टर शौकत ने चाय का घूंट लेकर प्याली मेज पर रखते हुए कहा। किसकी शादी? फरीदी मुस्कुरा कर बोला, अरे भाई अपनी। मेरी शादी? सुनो मियां शौकत, अगर मेरी शादी होती तो तुम्हारी शादी की नौबत ना आती, फरीदी ने हंसकर कहा। अच्छा, वो कैसे? अरे भाई सीधी सी बात है, अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं बच्चों को दूध पिलाता या जासूसी करता। मेरा ख्याल है कि कोई शादीशुदा शख्स कामयाब जासूस हो ही नहीं सकता। तब तो फिर मुझे भी इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं शादी के बगैर नहीं रह सकता, हमीद ने इतनी मासूमियत से कहा कि सब लोग हंसने लगे। अरे तो फिर क्या सारी जिंदगी कुंवारे ही रहोगे? शौकत ने पूछा। वेल, इरादा तो यही है, फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। भाई तुम सिगार बहुत पीते हो, तुम्हारा फेफड़ा बिल्कुल काला पड़ जाएगा, डॉक्टर शौकत ने बोला। अगर सिगार भी ना पीऊं तो फिर जिंदगी में रह ही क्या जाएगा? अच्छा तो ये कहिए कि सिगार ही को अपनी बेगम बना लिया है। नजमा हंसकर बोली। हमीद कह कहा मार कर हंसने लगा, बाकिया लोग सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। हालांकि ये कोई ऐसा वाक्य नहीं था जिस पर कि कह कहा लगाया जाए, लेकिन फरीदी हमीद की आदत से वाकिफ था। वो औरतों के फूहड़ जुमलों पर खूब खुश हुआ करता था। हाँ भाई फरीदी, तो ये बताओ कि तुम मरे किस तरह थे, मुझे तो आज तक ही मालूम ना हो सका, डॉक्टर शौकत ने पूछा।
अरे ये एक लंबी कहानी है,
लेकिन चलो मैं तुमको छोटी करके बताता हूं। मुझे शुरू से ही सलीम पर शक था, लेकिन शुरू में मैंने एक बुनियादी गलती की थी जिसके बिना पर मुझे मरना पड़ा।
हालांकि मैं पहले से जानता था कि नेपाली का कातिल हम लोगों का पीछा कर रहा है और वो हम लोगों को अच्छी तरह पहचानता है। इस सिलसिले में मुझसे जो गलती हुई थी वो ये थी कि सलीम से रिपोर्टर के भेस में मिला था मैं। वो मुझे पहचान गया और उसने वापसी पर मुझ पर राइफल से फायर कर दिया, लेकिन नाकाम रहा। उसने राइफल प्रोफेसर के हाथ में थमा दी और खुद गायब हो गया। प्रोफेसर के बारे में तो तुम जानते ही हो कि वो कुछ पागल सा है। सलीम उसे अपना हथियार बनाए हुए था। कई साल पहले की बात है जब प्रोफेसर यहां नहीं आया था और अच्छा खासा था। वो उन दिनों एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने चांद का सफर करने के लिए गुब्बारा बनाया था। एक्सपेरिमेंट के लिए उसने पहली बार अपने असिस्टेंट नईम को उस गुब्बारे में बैठाकर उड़ाया था। शायद नईम गुब्बारे से उतरने की कला भूल गया था और उसकी मशीन खराब हो गई थी। गुब्बारा फिर प्रोफेसर के ख्याल से जमीन की तरफ कभी न लौटा। हालांकि उसका ख्याल गलत था। नईम गुब्बारे समेत मद्रास के एक गांव में गिरा था। उसे काफी चोटें आई थी लेकिन गांव वालों की देखभाल की वजह से वो ठीक हो गया। उसी दौरान उसे एक बाजारू लड़की से इश्क हो गया और वो वहीं रह गया। प्रोफेसर इन सब बातों से अनजान था। वो खुद को अपराधी समझ रहा था। इस परेशानी में वो करीब करीब पागल सा हो गया था। उसके बाद वो शहर छोड़कर राजरूप नगर आ गया। नईम ने उसे खत लिखे जो उसके पुराने ठिकाने से फिरते फिराते यहां राजरूप नगर आए थे। वे खत किसी तरह सलीम के हाथ लग गए और इस तरह प्रोफेसर के बारे में उसे सब पता चल गया। अब उसने प्रोफेसर पर अपनी धौंस जमाना और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे इन सब बातों का उस वक्त पता चला जब मैं एक रात चोरों की तरह इस कोठी में दाखिल हुआ और सलीम के कमरे की तलाशी ली। नईम के लिखे हुए खत अचानक मुझे मिल गए। इस तरह मैं जान भी गया और उसी वक्त मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा कि मुझ पर गोली सलीम ने ही चलाई थी, क्योंकि प्रोफेसर को तो राइफल चलाना आता ही नहीं था। ओहो, देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया। हां, तो मेरे मरने की बात। जब मैं सलीम और डॉक्टर तौसीफ से मिलकर वापस जा रहा था, सलीम ने रास्ते में धोखा देकर मुझे रोका और झाड़ियों की आड़ से मुझ पर गोलियां चलाने लगा। मैंने भी फायर शुरू किए। उसी दौरान अचानक मुझे अपनी गलती का ख्याल हो आया और मैंने तय कर लिया कि मुझे किसी ना किसी तरह ये साबित करना है कि अब मेरा वजूद दुनिया में है ही नहीं, वरना ये होशियार मुजरिम हाथ आने से रहा। इसलिए मैंने अपने मरने का नाटक किया और शहर की तरफ चल पड़ा। मैं सीधा अस्पताल पहुंचा और वहां कंपाउंड में मोटर से उतरते वक्त गश खाकर गिर पड़ा। लोगों ने मुझे अंदर पहुंचाया। मैंने डॉक्टर को अपनी सारी स्कीम बता दी और अपने चीफ को बुलवा भेजा। उनको भी मैंने सब कुछ बताया। फिर वहां से मेरे जनाजे का इंतजाम शुरू हुआ। किस्मत मेरे साथ थी। उस दिन इत्तेफाक से अस्पताल में एक लावारिस मरीज मर गया था। मेरे डिपार्टमेंट के लोग उसे स्ट्रेचर पर डालकर अच्छी तरह ढांक कर मेरे घर ले आए। पड़ोसी और दूसरे जानने वाले उसे मेरी लाश समझ बैठे। मेरी मौत की खबर उसी दिन शाम अखबारों में छप गई। फिर मैंने उसी रात हमीद को एक नेपाली के भेस में डॉक्टर तौसीफ के यहाँ भेजा और उसे ताकीद कर दी कि वो मेरे राजरूप नगर आने के बारे में किसी से कुछ ना कहे। इसीलिए ये बात छिपी रही। मैं राजरूप नगर आ गया। इस तरह सलीम धोखा खा गया और उसे इत्मीनान हो गया कि उस पर शक करने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। मैं चाहता था कि तुम्हें किसी तरह राजरूप नगर ले जाऊं, इसलिए मैंने डॉक्टर तौसीफ को दोबारा कहलवा भेजा कि जरा जल्दी तुम्हें राजरूप नगर ले आए। जब तुम वहां पहुंचे तो मैं साय की तरह तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम्हारी कार मैंने ही खराब की थी। मुझे ये पहले से ही मालूम था कि इस कोठी में कोई कार मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने यकीन कर लिया कि इस सूरत में तुम पैदल ही जाओगे। मुझे ये भी यकीन था कि सलीम तुम्हें नवाब साहब के ऑपरेशन से पहले खत्म कर देगा, इसीलिए मैंने उसे मौका वारदात पर ही गिरफ्तार करने की सोची। लेकिन उस कमबख्त ने वो दांव इस्तेमाल किया जिसका मुझे पता तक न था। तुम वाकई किस्मत के अच्छे थे कि सुई प्रोफेसर के हाथ से गिर गई, वरना तुम खत्म हो जाते और मुझे पता भी ना चलता। उसके बाद तुम तो कस्बे में चले गए और मैं एक माली के खाली झोंपड़े में बैठकर प्लान बनाता रहा। ये तो मुझे तुम्हारी ही जबानी मालूम चल गया था कि तुम शाम को भी पैदल ही आओगे। उसी दौरान मुझे प्रोफेसर के बारे में कुछ और बातें मालूम हुई। एक तो ये कि वो कोकीन खाने का आदी था। ओहो, देखो बातों ही बातों में मैं बहकता चला जा रहा हूँ।
बाकी हालात बताने से क्या फायदा, वो सब तो तुम जानते ही हो। बहरहाल ये थी मेरे मरने की दास्तान। हाँ, खुदा तुम्हें जन्नत नसीब करे, डॉक्टर शौकत ने हंसते हुए कहा। तो फरीदी भाई, अब तो आपकी तरक्की हो गई ना, दावत में हमें ना भूलिएगा, नजमा ने मुस्कुरा कर कहा। अरे मैं तरक्की कब चाहता हूँ, अगर तरक्की हो गई तब तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस सूरत में मुझे दफ्तर में ही बैठकर मक्खियां मारनी पड़ेंगी। फिर दिन भर मक्खियां मारने के बाद घर पर तो मुझसे मक्खियां मारी ना जाएंगी, और इसका नतीजा ये होगा कि घर पर मक्खियां मारने के लिए मुझे एक अदद बीवी का इंतजाम करना पड़ेगा, जो मेरे बस का रोग नहीं है। नजमा, शायद तुम इन्हें नहीं जानती कि हमारे फरीदी साहब जासूसी का शौक पूरा करने के लिए इस विभाग में आए थे, वरना ये खुद काफी मालदार आदमी हैं और इतने कंजूस हैं कि खुदा की पनाह। अच्छा अच्छा, आज मैं ये नई खबर सुन रहा हूँ कि मैं कंजूस हूँ। क्यों भाई, मैं कैसे कंजूस हूँ? अच्छा, शादी ना करना कंजूसी नहीं है तो क्या है, नजमा ने कहा। अच्छा भाई हमीद, अब चलना चाहिए, वरना कहीं ये लोग सचमुच ही मेरी शादी ना करवा दें, फरीदी ने उठते हुए कहा। अरे बैठिए भी ना, ऐसे क्या जल्दी है, नजमा बोली। अरे नहीं बहन, अब चलूंगा, कई जरूरी काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। नजमा और शौकत दोनों को कार तक पहुंचाने आए। दोनों के चले जाने के बाद शौकत बोला, ऐसा हैरत अंगेज आदमी मेरी नजरों से नहीं गुजरा, पता नहीं पत्थर का बना है या लोहे का, मैंने तो आज तक उसे ये कहते नहीं सुना कि मैं आज बहुत थका हुआ हूं। और सार्जेंट हमीद बिल्कुल मुर्गी का बच्चा मालूम होते हैं, नजमा हंसकर बोली। क्यों, अब न जाने क्यों मुझे उसकी नाक देखकर मुर्गी के बच्चे की याद आ जाती है। बहरहाल आदमी खुश मिजाज है। अच्छा आओ अब अंदर चलें, सर्दी तेज हो रही है, ये कहकर दोनों कोठी के अंदर दाखिल होने के लिए चल पड़े। आप सुन रहे थे कहानी दिलेर मुजरिम का आखिरी भाग। आप तक इसे पहुंचाया नैनी दीक्षित ने गाथा के माध्यम से।